پیش خدمت ہے پروگرام ہر دم رواں ہے زندگی, پیشکش یاسمین جمیل.
السلام علیکم. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ہر دم رواں ہے زندگی لے کر یاسمین جمیل حاضر ہے. یہ پروگرام اس وقت نشر ہو رہا ہے براہ راست پاکستان میں ریڈیو پر میڈیم ویو 972 پر, اور دنیا بھر میں ہمارے سننے والوں کے لیے انٹرنیٹ پر ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر, اور اردو voa کے فیس بک پیج پر ہمارے مہمانوں کی تصاویر کے سنگ سنگ facebook.com/voa urdu پر. آج ہم بات کر رہے ہیں اس بارے میں کہ اگلے 5 برسوں میں دنیا بھر میں اور پاکستان کے اسکولوں اور تعلیمی اداروں کے کلاس رومز کا نقشہ کیا ہوگا, اور پڑھنے اور پڑھانے کے انداز میں آن لائن لرننگ اور روایتی تعلیمی اور تدریسی طریقوں کو کیسے استعمال کیا جائے گا, اور اس سے تعلیم کا انداز اور معیار کس حد تک بہتر ہو جائے گا. اس موضوع پر گفتگو کے لیے ہم نے دعوت دی ہے ای لرننگ کے 2 ماہرین اور پاکستان, امریکہ اور دنیا کے کئی ملکوں میں قائم آن لائن لرننگ کی ٹریننگ کے ایک ادارے نالج پلیٹ فارم کے پاکستان میں کنٹری ڈائریکٹر اور چیف ٹیکنالوجی آفیسر طلحہ منیر خان کو, اور سینئر مارکیٹنگ ایگزیکٹو مینیجر مہرین سہیل کو, جس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ٹیلی فون پر اسلام آباد سے. گفتگو شروع کرنے سے پہلے ہم اپنے سننے والوں کو فیس بک پر اس سوال کا مختصر جواب لکھنے کی دعوت دیں گے کہ پاکستانی تعلیمی اداروں میں معیار تعلیم کی بہتری کے لیے ٹیکنالوجی کا استعمال کس طرح کیا جا سکتا ہے. بہترین 3 جوابات پر ہمارے مہمانوں کا ادارہ نالج پلیٹ فارم ٹوکن انعامات پیش کرے گا, جن سے وائس آف امریکہ کا کوئی تعلق نہیں ہوگا. تو گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اپنے پہلے مہمان نالج پلیٹ فارم کے پاکستان میں کنٹری ڈائریکٹر اور چیف ٹیکنالوجی آفیسر طلحہ منیر خان سے. السلام علیکم طلحہ منیر خان صاحب.
وعلیکم السلام یاسمین,
بہت شکریہ ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالنے کا. طلحہ, آپ کا ادارہ جو ہے نالج پلیٹ فارم پاکستان اور دنیا بھر میں الیکٹرانک لرننگ کی ٹریننگ کے حوالے سے بہت کچھ کر رہا ہے, تو کچھ بتائیے ہمارے سننے والوں کو کہ اس وقت دنیا کے ترقی یافتہ ملکوں کے اسکولوں میں پڑھنے پڑھانے کے نئے انداز اور طریقے کیا ہیں, اور پاکستان میں وہ انداز اور وہ طریقے کس حد تک استعمال ہو رہے ہیں.
بہت شکریہ یاسمین اس پروگرام میں انوائٹ کرنے کے لیے. میں اپنے سامعین سے یہ گزارش کروں گا کہ وہ جیسے ہم اس گفتگو کو شروع کریں اور بڑھائیں, وہ اپنے ذہن میں ایک سوال ضرور رکھیں اور اپنے آپ سے ایک سوال ذہن میں پوچھیں کہ جس طرح سے اس وقت پاکستان کے اندر اسکولوں میں تعلیمی اداروں میں پڑھایا جا رہا ہے, کیا یہ طریقہ اسی طرح جاری رہے گا یا اس طریقے میں کوئی تبدیلی آنے کا امکان ہے اگلے 5 سالوں میں. تو اس چیز کے بارے میں سوچیں نہیں, تو اس دوران میں یہ شیئر کروں گا کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور دنیا میں جو تعلیمی ادارے ہیں ان میں خاص طور پہ جو تعلیم ہے وہ کس طرح پڑھانے کا طریقہ کیا ہے اور کس طرح کلاس رومز میں یوز ہو رہا ہے. تو ایک چیز جو بڑی بنیادی ہے وہ یہ ہے کہ جو استاد کا رول ہے اسکولس کے اندر وہ بہت زیادہ تبدیل ہو گیا ہے. باہر جو اسکولس ہیں ان کے اندر استاد جو ہیں وہ اب, پہلے یہ ہوتا تھا کہ ایک استاد کو سمجھا جاتا تھا کہ وہ ایک اتھارٹیٹیو فگر ہیں, یعنی ایک طرح سے وہ بس آئیں گے اور کلاس روم کے اندر لیکچر دیں گے اور وہ لیکچر دے کر ایک یک طرفہ کمیونیکیشن یا آپ کہہ لیں کہ ہوتی تھی زیادہ تر, مگر اب وہ بہت زیادہ تبدیل ہو گیا ہے. اب اس چیز کے اوپر زیادہ زور دیا جا رہا ہے کہ کیسے کلاس رومس کے اندر بچوں کو بہت زیادہ ایکٹیولی انگیج کیا جائے, تو وہ صرف یہ نہ ہوں کہ سن رہے ہوں ٹیچر کی بات اور وہ کوئی پارٹیسپیٹ نہ کر رہے ہوں, یا کلاس روم میں یا ڈسکشن کے اندر وہ ایکٹیولی انوالو نہ ہوں. تو ایک تو رول ٹیچر کا اس طرح چینج ہو گیا ہے کہ فیسیلیٹیٹر کا رول زیادہ ہے ٹیچر کا. دوسرا, جیسے جیسے ٹیکنالوجی آتی جا رہی ہے کلاس رومز کے اندر, تو باہر خاص طور پہ نئے پڑھانے کے طریقے بھی کلاس روم کے اندر اختیار کیے جا رہے ہیں. مثلا ایک بہت انٹرسٹنگ طریقہ ہے جس کو فلپ کلاس روم ماڈل کہتے ہیں, جس میں یہ کیا جاتا ہے کہ استاد جو ہیں وہ بچوں سے کہتے ہیں کہ آپ پہلے گھر میں یہ لیکچر آن لائن اویلیبل ہے, تو آپ اس کو پہلے آن لائن اس ویڈیو کو یا اس اسیسمنٹ کو یا اس ایکٹیویٹی کو دیکھ کر آئیں, اور اس کے بعد جب وہ کلاس روم میں آتے ہیں تو کلاس روم کے اندر ڈسکشن ہوتی ہے بچوں کے ساتھ اور ان کے ساتھ ایکٹیویٹی ہوتی ہے. تو یعنی کلاس روم, اس کو فلپ کلاس روم اس لیے کہتے ہیں کہ جو کلاس میں پڑھانے کا طریقہ تھا وہ پڑھ کے بچہ گھر سے آ رہا ہے, مگر گھر سے بچہ آ کر वो क्लासरूम में अप्लाई कर रहा है, डिस्कस कर रहा है टीचर्स के साथ. एक और बड़ी इंटरेस्टिंग जो चीज मैं बताना चाहूंगा, एक तहकीक है एक अमरीकी इदारे ने की, जिसमें उन्होंने बच्चों को कुछ पढ़ाया और उसके बाद उन्होंने उनका इम्तहान लिया, असेसमेंट ली, और उसके अंदर जो परसेंटेज आई बच्चों की वो कुछ थी. और फिर उन्होंने वही उसी इम्तहान को दो हफ्ते के बाद बच्चों का दोबारा लिया. तो उसमें उन्होंने ये दरियाफ्त किया कि जो स्कोर था बच्चों का असेसमेंट का वो ड्रॉप हो गया. तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज याद रखने की है कि जब हम बहुत सारे इम्तहान की तैयारी कर रहे होते हैं या बहुत सारी चीजें सीख रहे होते हैं, तो वो बहुत सारी चीजें हमें जहन में याद नहीं रहती. तो इसीलिए जो नए तालीमी तरीके हैं उसमें इंसानी साइकोलॉजी को और ये समझते हुए कि इंसान कितनी इंफॉर्मेशन अपने जहन में याद रख सकता है और किन तरीकों से फिर वो चीज जो है इंसान की लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर डाली जा सकती है, उनके इन तरीकों के ऊपर ज्यादा अच्छे तरीके से अब काम हो रहा है. तो मसलन अब अगर क्लासरूम में किसी टॉपिक के ऊपर कोई एक्टिविटी होती है तो वो चीज जो है बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से समझ आती है और वो उनको उनके लिए एक देरपा यादाश्त का बहस बनती है. तो ये एक एस्पेक्ट है जिसके अंदर जो टीचर का रोल है वो तब्दील हो रहा है, बच्चों की इंगेजमेंट, एक्टिव इंगेजमेंट क्लासरूम्स में हो रही है. और फिर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, क्योंकि टेक्नोलॉजी आपने देखा है कि हमारी जिंदगियों के अंदर अब बहुत एक्टिव तरीके से शामिल हो गई है और हम जैसे पहले मोबाइल फोन्स जो हैं वो यूज करते हैं और इंटरनेट अब बहुत अवेलेबल है, हर जो कम्युनिकेशन के तरीके हैं वो बदल गए हैं.
आप ये कह रहे हैं कि जदीद टेक्नोलॉजी के जो तरीके हैं उनका इस्तेमाल क्लासरूम्स में बढ़ रहा है, लेकिन अब जो अगली बात आप अब करने वाले हैं और यकीनन मैं उसी बारे में सवाल करूंगी कि जो ऑनलाइन लर्निंग का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत डेवलप कर गया है आजकल, तो ये बात तो सही है कि जो आपने क्लास में टीचिंग के अंदाज बदल गए, कंप्यूटर्स भी फराहम कर दिए गए, लैपटॉप भी हैं और टेबलेट्स का इस्तेमाल भी बहुत से स्कूलों में होने लगा है, लेकिन ऑनलाइन लर्निंग का जो कॉन्सेप्ट है वो किस तरह हमारे तालीमी इदारों में खासतौर पर स्कूलों में दाखिल हो रहा है?
जी, तो इसमें अगर मैं दो चीजें कहूँ, एक तो पाकिस्तान में क्या हो रहा है और एक पाकिस्तान से बाहर जो सारी दुनिया में तालीमी इदारे हैं उनमें क्या हो रहा है. ब्लेंडेड लर्निंग एक कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर जो बहुत ज्यादा आजकल पॉपुलर हो रहा है, जिसमें टेक्नोलॉजी को यूज कर पढ़ाया जाता है, रिवायती तरीके से पढ़ाने के साथ साथ टेक्नोलॉजी को यूज करके क्लासरूम्स में पढ़ाया जाता है. तो पढ़ाने के तरीके में वो एक ब्लेंडेड अप्रोच है और पढ़ने के तरीके में जो बच्चे हैं उनको ऑनलाइन लर्निंग प्रोवाइड की जाती है, साथ मुहैया की जाती है, ताकि वो ना सिर्फ क्लासरूम में पढ़ें बल्कि जब वो घर जाएं तो घर के ऊपर, घर में वो ऑनलाइन लर्निंग के थ्रू लर्न करें. तो वो कॉन्सेप्ट जिसमें वो एक मुअल्लिम से पढ़ रहे होते हैं या उस्ताद से पढ़ रहे होते हैं और ऑनलाइन भी पढ़ रहे होते हैं, इसको ब्लेंडेड लर्निंग कहते हैं और ये सबसे इफेक्टिव तरीका है लर्निंग का.
बल्कि मैं ये चाहूंगी कि अब जब ब्लेंडेड लर्निंग की बात चली तो अपने प्रोग्राम की जो दूसरी मेहमान है मेहरीन सोहेल, उनको भी प्रोग्राम में शामिल कर लूँ, गुफ्तगू में शामिल कर लूँ. मेहरीन, आप बताइए कि जैसे कि अभी तलहा ने, मुनीर ने कहा कि ब्लेंडेड लर्निंग का कॉन्सेप्ट जो है वो काफ़ी स्कूलों में अब पाकिस्तान में भी आ रहा है, तो आपका इदारा भी इस सिलसिले में बहुत काम कर रहा है और आपका खुद भी बड़ा इंटरेक्शन रहा है अपने इस इदारे के काम के सिलसिले में, स्कूलों से आपका रब्ता रहा और ऑनलाइन भी आप फेसबुक पर और दूसरे सोशल मीडिया पर जो बच्चे हैं उनसे जो आपके प्रोग्राम में शामिल होते हैं आपके इदारे के साथ ऑनलाइन, उनसे आपकी इंटरेक्शन है, तो आपने क्या देखा कि पाकिस्तान में बच्चों में और उनके वालदैन में ये जो नए तरीके इस्तेमाल करने का रुझान या ट्रेंड कैसा जा रहा है, बढ़ रहा है या कम हो रहा है?
एक्चुअली बढ़ रहा है और मेरे ख्याल में तलहा भी मेरे साथ एग्री करेंगे जब मैं कहूंगी कि काफी तेजी से बढ़ रहा है. सो अगले दो सालों में हम इल्म आइडियाज का एक प्रोजेक्ट है, उनके साथ हम 200 स्कूलों में जा रहे हैं विद आवर ब्लेंडेड लर्निंग मॉडल. जैज स्मार्ट स्कूल्स के साथ हम 75 बच्चियों के स्कूलों में जा रहे हैं. तो उस तरह आउटरीच उस तरह भी बढ़ रही है, लेकिन अगर आप सिर्फ ये देखें कि हमने एक नॉन प्रॉफिट इनिशिएटिव शुरू किया था 2014 में, क्योंकि जिसका नाम था लर्न स्मार्ट पाकिस्तान, उसमें बच्चों की टीचर्स ने इतना ज्यादा उन्हें नहीं कहा, हमने सिर्फ खुद डायरेक्टली बच्चों से कहा कि आप आए मैथ और इंग्लिश की चीजें पढ़ें. और पहले साल में हमारे पास कोई 100 से ज्यादा बच्चे थे इस स्टूडेंट स्मार्ट पाकिस्तान में, इस साल अब 15,000 क्रॉस कर गए हैं। सो जस्ट थिंक के 4 सालों में इतनी ज्यादा ग्रोथ हुई है। जी आप कहेंगे कि पेरेंट्स और बच्चों का क्या रिएक्शन है इससे, तो मैं ये कह सकती हूँ कि मैं पर्सनली पेरेंट्स से मिलती हूँ और पर्सनली बच्चों से भी मिलती हूँ जब वो हमारे पास आते हैं, उन्हें इनामात मिलते हैं उस तरह। और पेरेंट्स को सिर्फ ये होता है कि उनके बच्चे जो लेटेस्ट टेक्निक्स हैं उसके थ्रू वो पढ़ें और जो आगे जमाना बढ़ रहा है उसके साथ ही रहें वो, मतलब दे शुड बी कॉट अप बेसिकली उनके बच्चे।
अच्छा,
तो अब आप देखें कि प्राइवेट स्कूल जो सेक्टर है वो काफी तेजी से बढ़ रहा है पाकिस्तान में, वो इसीलिए क्योंकि बच्चे पेरेंट्स सोचते हैं कि प्राइवेट स्कूल में उनके बच्चे पढ़ जाएं तो बहुत अच्छा पढ़ जाएंगे। तो एक ये भी निशानी है कि पेरेंट्स चाह रहे हैं कि उनके बच्चे जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज हैं उन्हें अब इम्प्लॉय करें, और बच्चों को भी काफी ज्यादा है कि वो अब मॉडर्न जो वे ऑफ लिविंग है उसके साथ साथ चलें।
तो आपका जो इदारा है, चलिए थोड़ी सी बात आपके इदारे की भी कर लें, नॉलेज प्लेटफॉर्म जो है और जो आपका जो एक प्रोजेक्ट है लर्न स्मार्ट पाकिस्तान, जिस पर हम पहले भी एक प्रोग्राम कर चुके हैं, तो वो इस इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग का जो की ट्रेनिंग है वो किस तरीके से दे रहा है और क्या क्या कुछ उसका सक्सेस स्टोरी क्या रही है?
सक्सेस स्टोरी आई थिंक इसके तलहा आप किस तलहा
जी तलहा आप बताइए कि क्या उसकी सक्सेस स्टोरीज है इसकी नॉलेज प्लेटफॉर्म की, इस हवाले से कि वो दुनिया पाकिस्तान भर के बच्चों को, खासतौर पर आपने प्रोग्राम से पहले बताया था कि इंगेज कर रहा है उनको अपने सिलेबस के मुताबिक इम्तिहान की तैयारी कराने के लिए 9th और 10th के बच्चों को, तो क्या सक्सेस स्टोरी रही है इसकी?
जी बहुत सारे जब हमने प्रोग्राम शुरू किया था तो हमें अंदाजा नहीं था कि इतना ये मकबूल हो जाएगा, लेकिन इसमें जो खास बात है वो ये है कि बच्चे ये एक बिल्कुल मुफ्त अवेलेबल है, कोई भी पाकिस्तानी बच्चा इस प्लेटफॉर्म पे ऑनलाइन आकर अगर उनके पास मोबाइल है या लैपटॉप है या टैबलेट है तो वो एक्सेस कर सकता है। और जो फिर हमने बिल्कुल लोकल करिकुलम के मुताबिक लोकल कंटेंट असेसमेंट्स एक्टिविटीज और गेम्स बनाकर इस पे रखी हुई हैं, और हम अभी 9th और 10th की हैं जैसे आपने बताया, और अभी हम 6th, 7th, 8th grade मैथ्स इंग्लिश और साइंस के ऊपर काम कर रहे हैं, तो जैसे जैसे वो बनता जाएगा वो भी हम ऑनलाइन अवेलेबल करते जाएंगे। इसमें हमने देखा कि बहुत सारे बच्चे जब हमने पहला कंपटीशन किया उन्होंने उसमें हिस्सा लिया तो एक खुद एतमादी आई उनके अंदर बहुत ज्यादा, और हमने ऐसे बच्चे ट्रांसफॉर्म होते हुए देखे हैं जिनको पहले एजुकेशन में इंटरेस्ट नहीं था, मगर जब इस तरह के सिस्टम्स के थ्रू जो कि ये ऐसा सिस्टम है जैसे आप समझ लें कि पर्सनलाइज लर्निंग इसको कहते हैं, यानी अगर आप इसमें असेसमेंट्स लें तो वो सिस्टम ये जान सकता है कि आप कौन सी एरियाज और कौन सी स्किल्स के अंदर आप स्ट्रगल कर रहे हैं या आपको उनमें मुश्किल हो रही है, तो फिर सिस्टम उन एरियाज के ऊपर ज्यादा सवाल और ज्यादा कंटेंट और ज्यादा वीडियोस देता है, जिसकी वजह से जो बच्चे हैं वो फिर खुद ही बेहतर तरीके से समझ सकते हैं बगैर किसी उस्ताद के। लेकिन साथ ही साथ तो इस तरीके से हमने देखा कि बहुत सारे बच्चे जो तालीम में जिनको स्कूल्स के अंदर मुश्किल आ रही थी, जब उन्होंने इस तरह का ऑनलाइन तरीका अख्तियार किया और जिनके पास स्पेशली ट्यूशन का एक्सेस नहीं था, जो कि 9th और 10th में आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट साल होता है बच्चों के लिए, तो उनके लिए ये बहुत हेल्पफुल था कि बगैर किसी ट्यूशन के उन्होंने इस प्लेटफॉर्म को यूज करके वीडियोस, कंटेंट, गेम्स और एक्टिविटीज और फिर असेसमेंट्स के थ्रू अपनी लर्निंग को बहुत ज्यादा इंप्रूव किया और बोर्ड में बहुत सारे अच्छे नंबर भी लिए।
अच्छा,
तो ये हमारी
तो अब तक आपकी महरीन आप कुछ कह रहे हैं कि क्या अब तक का क्या रेशो है, कितने हजार बच्चों को आप ऑनलाइन उनके इम्तिहान की तैयारी करवा चुके हैं और आप ये समझते हैं कि उनके रिजल्ट बड़े अच्छे आए?
सॉरी यासमीन आपकी आवाज में हमें थोड़ी कट की थी, आप फिर से सवाल करें।
सवाल यही कि आपने अपने इदारे के थ्रू अब तक कितने हजार बच्चों को ऑनलाइन उनके सिलेबस के मुताबिक इम्तिहान की तैयारी कराई?
जी लर्न स्मार्ट पाकिस्तान के थ्रू हमने अभी तक कोई 15,000 हो गए, इस साल के एंड तक हम 50,000 आउटरीच करना चाहते हैं। जो तलहा कह रहे थे उसके साथ मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी भी बताना चाहती हूँ कि पिछले 2014 में हमें थोड़ा स्पेशली बच्चियों के साथ मसला होता है कि उनके पेरेंट्स नहीं इजाजत देते कि वो इंटरनेट एक्सेस करें और ऑनलाइन लर्निंग खुद करें, तो हमारे पास ऐसे केसेस थे जो पेरेंट्स कहते थे कि हम नहीं इजाजत देते अपनी बेटियों को, तो एक ऐसे पेरेंट्स आए, ये एक्चुअली दो केसेस इस तरह के हो चुके हैं कि वो आए, उनसे हमने पर्सनली बात की, उनके पास हम गए, हमने कहा ये जिसमें मतलब सिर्फ उनका सीखना है, उनकी बेहतरी है। और अगले साल जो 2015 का चैलेंज है, वही पेरेंट्स अपनी फिर उन बेटियों की छोटी बहनें भी साथ लेके आए, मतलब अपनी।
तो इसका मतलब ये कि आप ये कह रही हैं कि न सिर्फ ये कि आम बच्चों के लिए बल्कि खासतौर पर लड़कियों के लिए जो ऑनलाइन लर्निंग जो है ये बहुत मुफीद साबित हो रही है, जो घरों में बैठी हैं, जिनको स्कूलों में दाखिले का मौके बाज़ात नहीं मिल रहे होते या उनको यह वसाइल नहीं है कि वो कोई ट्यूशन रख सकें, उनके लिए ये बड़ा सस्ता और आसान तरीका है कि ऑनलाइन वो अपने इम्तिहान की तैयारी के लिए इस सिस्टम को इस्तेमाल करें जो आप जैसे इदारे इस वक्त मुतारिफ करा रहे हैं। और आपका इदारा तो बिल्कुल मुफ्त ये सहूलत फराम कर रहा है, बेहद शुक्रिया मेरिन सोहेल। एक ब्रेक का वक्त हो गया मेरिन और तलहा मुनीर, और ब्रेक के बाद हम गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। हरदम रवा है जिंदगी, वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन से हर जुमेरात को नशर होने वाला प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात कराते हैं जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों में आगे बढ़ते हुए कामयाब पाकिस्तानी अमरीकियों और मुख्तलिफ प्रोग्रामों के तहत अमरीका का दौरा करने वाले मुमताज पाकिस्तानियों से।
जब मैं स्टूडेंट था, मैं लाइब्रेरी में काम करता था, मैंने कन्वीनियंस स्टोर में काम किया, मैंने एक कुक की हैसियत से काम किया, मैंने सफाइयां भी की, झाड़ू भी दी, और उसके साथ और मुझे फख्र है कि मुझे ये सब काम बड़े अच्छे आते हैं और इससे मेरी बेगम भी बहुत खुश रहती हैं।
ये कि जब से, हाँ ये कह सकते हैं कि जब से ये पाकिस्तान का जश्न आजादी का मेला शुरू हुआ है तो ये इस मोर अबाउट पाकिस्तान, और ये पाकिस्तान तो हमारे पाकिस्तानियों के दिल में हमेशा रहता है, हमेशा से हमारी ख्वाहिश होती है कि हम अपने मुल्क के लिए कुछ ऐसा करें कि कुछ यहाँ यूएस में उसका नाम रोशन हो, तो बस इसी सिलसिले की एक कोशिश समझ लीजिए इसको।
तो लोग यहाँ पे आते हैं वो यही सोच के यहाँ पे आते हैं कि जो भी यहाँ पे सीखेंगे उन स्किल्स को लेके उन्होंने अपने कंट्रीज में वापस जाना है।
ये प्रोग्राम बराह रास्त नश्र होता है पाकिस्तान में रेडियो पर मीडियम वेव 972 पर और इंटरनेट पर वॉइस ऑफ अमेरिका की उर्दू वेबसाइट urduvoa.com पर। हमारे प्रोग्राम को फेसबुक पेजेस पर हमारे मेहमानों की तस्वीर और वीडियोस के संग संग बराह रास्त सुनने के लिए हमारे लिंक्स हैं facebook.com/voaurdu और facebook.com/hardamrawahaizindagi और facebook.com/yasminjameelvoaurdu। जी, हरदम रवा है जिंदगी में हम गुफ्तगु कर रहे हैं इस बारे में कि अगले 5 वर्षों में दुनिया भर में और पाकिस्तान के स्कूलों और तालीमी इदारों के क्लास रूम्स का नक्शा क्या होगा, और पढ़ने और पढ़ाने के अंदाज में ऑनलाइन लर्निंग और रिवायती तालीमी और तदरीसी तरीक़ों को कैसे इस्तेमाल किया जाएगा, और इससे तालीम का अंदाज और मायार किस हद तक बेहतर हो जाएगा। इस मौजू पर गुफ्तगू के लिए हमने दावत दी है ई लर्निंग के दो माहरीन और पाकिस्तान, अमरीका और दुनिया के कई मुल्कों में कायम ऑनलाइन लर्निंग की ट्रेनिंग के एक इदारे नॉलेज प्लेटफॉर्म के पाकिस्तान में कंट्री डायरेक्टर और चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर तलहा मुनीर खान को, और सीनियर मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव मैनेजर मेहरीन सोहेल को, जिस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं टेलीफोन पर इस्लामाबाद से। और हम शुक्रगुजार हैं फेसबुक पर अपने उन सुनने वालों के जो इस वक्त हमारे प्रोग्राम को सराह रहे हैं और इस सवाल के जवाब को पोस्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तानी तालीमी इदारों में मायारे तालीम की बेहतरी के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किस तरह किया जा सकता है। बेहतरीन 3 जवाब पर हमारे मेहमानों का इदारा नॉलेज प्लेटफॉर्म टोकन इनाम पेश करेगा जिनसे वॉइस ऑफ अमेरिका का कोई ताल्लुक नहीं होगा। इन नामों का ऐलान हम 7 सितंबर या इससे पहले हरदम रवाया जिंदगी के अपने किसी प्रोग्राम में करेंगे, जिसके बारे में हम हरदम रवाया जिंदगी के फेसबुक पेजेस पर पहले से इत्तला दे देंगे। तो गुफ्तगू दोबारा शुरू करते हैं। तलहा मुनीर साहब, आपने कहा कि आने वाले वर्षों में पाकिस्तान के स्कूलों में ऑनलाइन और रिवायती अंदाज को आप ये यानी आपका ये कहना था कि मिला कर पढ़ाया जाने लगेगा, लेकिन क्लास की हद तक तो ये सब कुछ चल सकेगा कि स्कूल की हर टीचर नए अंदाज से पढ़ाएगी, उसका ऑनलाइन इम्तहान होगा, ऑनलाइन चेकिंग होगी, लेकिन जिस तरह आप बोर्ड के इम्तहान होते हैं सबको ऑनलाइन अंदाज में चलाना कैसे मुमकिन हो सकता है?
जी, आपने बिल्कुल सही बात की, लेकिन
क्योंकि एक एक इसका चला इसको साथ इस एक और सवाल इसके साथ अटैच कर लीजिए कि जब तक ऑनलाइन किताबें और निसाब नहीं होगा, और वही निसाब नहीं होगा जो सरकारी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया जा रहा हो, ताकि ऑन ग्राउंड जब तालिबे इम्तहान दे तो उसी सिलेबस के लिए तैयार भी हो जो हुकूमत की तरफ से मंजूर शुदा हो, तो इस सबको आम कैसे किया जा सकेगा? अभी तो आप प्राइवेट तौर पर ही काम कर रहे हैं।
जी, ये जो इस वक्त जाहिर है जो टेक्स्ट बुक्स को चेंज करना है वो अभी चूंकि ये रेवोल्यूशन भी हो चुकी है एजुकेशन सिस्टम की पाकिस्तान के अंदर, और जो सूबे हैं अब वो एजुकेशन को कंट्रोल करते हैं, تو ٹیکسٹ بکس کو چینج کرنا یہ ایک بہت مشکل کام ہے, اور ہم نے ایک کریکلم, نیشنل کریکلم بنا تھا 2006 میں, وہ ابھی تک صوبے فالو کر رہے ہیں, جس میں میتھس اور سائنس جو ہے وہ کم و بیش وہ وہی سارے صوبوں میں ٹیکسٹ بکس یوز ہو رہی ہیں جو نیشنل کریکلم میں بنائی گئی تھیں. تو جب آن لائن کانٹینٹ بنایا جاتا ہے جیسے ہم بناتے ہیں, تو ہماری یہ پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ایگزیکٹلی کریکلم کے مطابق اس کانٹینٹ کو بنائیں, مگر وہ الیکٹرانک ٹیکسٹ بک نہیں ہوتی, وہ اس میں ویڈیوز ہوتی ہیں, اس میں وہ آپ سمجھ لیں کہ آڈیو ویژول کانٹینٹ ہوتا ہے, اس میں ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, گیمز ہوتی ہیں, مگر سارا وہ کریکلم کے مطابق بنتا ہے. تو اگر کوئی بچہ اس کریکلم کے تھرو پڑھے یا آن لائن لرننگ کے تھرو پڑھے یا کلاس رومس کے اندر یہ پڑھانے کا طریقہ استعمال ہو جو کہ بلینڈڈ لرننگ جیسے کہتے ہیں, تو یہ وہ بالکل 100% تیار ہوتے ہیں بورڈ کے ایگزام کے لیے. تو ایسا نہیں ہے کہ اگر وہ کریکلم پڑھے ہیں جو بالکل, یا ایسا کانٹینٹ پڑھے ہیں جو یہاں کے مطابق بنا ہے, تو اسے پڑھ کر وہ تیار نہیں ہوں گے. اس میں ظاہر ہے بہت سارے بعض سبجیکٹس ایسے ہیں جیسے میتھ کے اندر پریکٹس کرنی پڑتی ہے, اور ہماری کوشش پھر یہ ہوتی ہے کہ ہم بچوں کو ایسی ایکٹیویٹیز کروائیں ساتھ, اور ویڈیوز کے اندر بھی ایون اگر ہم ویڈیو بناتے ہیں تو اس میں سوال حل کرنے کا ایک
نہیں. میرا سوال تلہ میرا سوال یہ ہے کہ حکومتی سطح پر جب تک یہ کام نہیں ہوگا کہ سلیبس باقاعدہ آن لائن آئے, باقاعدہ امتحانات آن لائن ہوں, باقاعدہ چیکنگ آن لائن ہو تاکہ ٹرانسپیرنٹ ریزلٹس آئیں, اس طرف پاکستان کی حکومت کچھ کر رہی ہے یا آپ اس سلسلے میں کچھ کر رہے ہیں کہ پروموٹ کریں اس تصور کو, اس کانسیپٹ کو؟
جی ہم جیسے حکومت تو میرے خیال ہے ابھی تو اس میں بہت زیادہ ٹائم لگے گا, چونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ ابھی ایک کمپلیکس سچویشن ہے, چونکہ صوبوں کے پاس یہ اختیار ہے تعلیم کے سسٹم کو چینج کرنے کا اور امتحانوں کو ڈیجیٹائز کرنے کا یا آن لائن کرنے کا.
تو صوبائی حکومتیں کچھ کر رہی ہیں اس سلسلے میں, صوبائی حکومتوں نے کچھ کیا؟
اس میں کچھ ہو رہے ہیں, جیسے پنجاب کے اندر ای لرن پنجاب کے نام سے انیشیٹو ہے, انہوں نے فرسٹ اسٹیپ کے طور کے اوپر بکس کو ڈیجیٹائز کر کے پی ڈی ایف کی فارم میں اور کچھ ویڈیوز اس میں ایڈ کر کے وہ رکھ دیا ہے. تو ابھی کچھ آغاز ہو رہا ہے, لیکن وہاں ہم ابھی بہت دور ہیں اس سے جہاں پر ہم امتحان کا جو طریقہ ہے اس کو تبدیل کر پائیں گے آن لائن سسٹم سے. تو میرا خیال ہے ابھی اس کے اندر پاکستان میں اس میں ابھی بہت ٹائم لگے گا,
بہت ٹائم. لیکن جیسے کہ پاکستان میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی نے یہ ای لرننگ کا ایک ماڈل پیش کیا ہے, تو کیا اسی ماڈل کو کاپی کر کے اسکولوں کی سطح تک لانا ممکن نہیں ہے, یا اس پر کوئی کام ہو سکتا ہے یا ہونا چاہیے؟
جی, اسکولوں کی سطح پر میں سمجھتا ہوں ایک ڈفرینٹ طرح کے ماڈل کی ضرورت ہے, جس کے اندر سب سے پہلے اسکولوں میں جو پڑھانے کا طریقہ ہے اس کو تبدیل کیا جائے, اس کو بلینڈڈ لرننگ کے طریقے پہ لایا جائے. ابھی کچھ انیشیٹیوز لیے جا رہے ہیں جو میں سمجھتا ہوں اچھی بات ہے, کہ ڈفرینٹ صوبوں میں ہارڈ ویئر جو ہے وہ آئی ٹی لیبس بنائی جا رہی ہیں, کچھ صوبوں میں اسمارٹ بورڈس لگائے جا رہے ہیں کلاس رومس میں, مگر یہ پہلا اسٹیپ ہے اس جانب, کیونکہ ہارڈ ویئر جو ہوتا ہے وہ ایک انفراسٹرکچر کی طرح, وہ ایک روڈ کی طرح ہے جو آپ کو چاہیے ہوتے ہیں سفر کرنے کے لیے. تو ہارڈ ویئر جو ہے وہ اگر لگ جاتا ہے اسکولس کے اندر, اسمارٹ بورڈ لگتے ہیں یا کلاس رومس میں یا آئی ٹی لیبس بنتی ہیں, اگر ان میں ڈیجیٹل کانٹینٹ نہیں ہوگا جو کہ لوکل کریکلم سے الائنڈ ہو, جیسے آپ نے کہا بالکل صحیح کہا, تو پھر بہت مشکل ہے کہ ہم ان چیزوں کا فائدہ اٹھا سکیں. اور پھر ہم یہ نہ کہہ رہے ہوں کہ دیکھیں ہم نے کلاس رومس میں اسمارٹ بورڈس لگا دیے, مگر پھر بھی اس سے تعلیمی معیار بہتر نہیں ہوا, چونکہ یہ ہم سب کیوں کرنا چاہ رہے ہیں, ہم اس لیے کرنا چاہتے ہیں اور یہ ساری دنیا میں اس لیے ٹیکنالوجی یوز ہو رہی ہے کہ تعلیم کا معیار جو ہے کلاس رومس کے اندر, اسکولس کے اندر, اسکول سے بہت بہتر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. میں بڑا انٹرسٹنگ آپ کو ایک بتاؤں کہ ہم چائنا میں گئے, تو چائنا کے اندر اسکولس میں, پبلک اسکولس کے اندر ہر اسکول میں اسمارٹ بورڈ اور پروجیکٹر جو ہیں وہ لگے ہوئے ہیں ہر اسکول کے اندر, ہر پبلک اسکول کے اندر, مگر پھر بھی ان کے پاس کانٹینٹ نہیں تھا. جیسے ہم نے پھر ان کے ساتھ انگلش کا کانٹینٹ 6th, 7th, 8th, 9th کا وہاں پہ بنایا ان کے لیے, اور جو کہ بالکل ان کی لوکل کریکلم سے الائن تھا. اور اب دو سالوں کے اندر ہم 300 اسکولوں سے زیادہ اور 1,00,000 سے زیادہ بچے اس سسٹم کو وہاں پہ یوز کر رہے ہیں چائنا میں.
تو یہ چین والا سسٹم
میں بھی میں سمجھتا ہوں.
ہاں, تو پاکستان میں آپ نے اس سلسلے میں کیا اقدامات کیے ہیں اور کیا آپ کرنا چاہ رہے ہیں؟
جی, پاکستان میں ہم ستمبر تک انشاءاللہ 75 اسلام آباد کے اسکولس میں, جس میں اسلام آباد کے زیادہ تر جو دہی علاقے ہیں, چونکہ اسلام آباد کو 6 ایریاز میں ڈیوائڈ کیا جاتا ہے اسکولوں کے حساب سے, उन 75 लड़कियों के स्कूलों में ये सोल्यूशन जो है हम अपना जो ब्लेंडेड लर्निंग का है ये लगा रहे हैं। और फिर जैसे मेहरी ने शेयर किया कि 2018 के आखिर तक हम 200 लो कॉस्ट प्राइवेट स्कूल के अंदर पाकिस्तान में ये सिस्टम जो है वो
तो इस सिलसिले में आपके साथ हुकूमत का तावुन, सूबाई हुकूमतों का तावुन शामिल है आपके साथ?
जी, कुछ ना कुछ हम कोशिश डेफिनेटली हमारी ये है कि उनको जहाँ पे भी इन्वॉल्व किया जा सकता है तो ज़रूर करें। मसलन अब मरकजी हुकूमत ये जो हम 75 स्कूल्स में काम कर रहे हैं कैड और फेडरल डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के तावुन से हो रहा है, तो सर्टनली जहाँ सरकारी स्कूल्स हैं उनके अंदर हुकूमतों के साथ काम करना पड़ेगा। और जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, चूँकि मैं ये भी बताना चाहूँ कि 1/3 जो हमारी एजुकेशन है वो लो कॉस्ट प्राइवेट स्कूल्स जो हैं पाकिस्तान की वो एजुकेशन दे रहे हैं बच्चों को, 1/3। और कोई आप यू नो 70,000 से ज्यादा लो कॉस्ट प्राइवेट स्कूल्स हैं, ये वो स्कूल्स हैं जिनकी फीस जो है वो 500 रुपए से लेके तकरीबन 3-4 हजार रुपए पर बच्चा पर मंथ है, वो इस रेंज में आते हैं। तो 70,000 स्कूल्स बने हुए हैं और इसमें तकरीबन कोई 11 से 12 मिलियन बच्चे हैं जो इन लो कॉस्ट प्राइवेट स्कूल्स के अंदर पढ़ रहे हैं। तो इसी तरह जैसे एक गवर्नमेंट का सेक्टर है जिसमें तकरीबन
तो आप ये कह रहे हैं
इसी तरह पब्लिक सेक्टर,
तो इसमें महरीन आप कुछ ऐड करेंगे कि ये जो आपका ये कहना या आप ये कहना चाह रहे हैं या ये मुमकिन है कि ये जो ऑनलाइन लर्निंग का जो सिस्टम है वो सस्ता भी पड़ता है उससे उसकी नस्बत जो कि बराह रास्त पढ़ाया जाता है स्कूलों में? महरीन
सस्ता इनिशियल जी हार्डवेयर कॉस्ट इनिशियली होती है लेकिन मेरा ख्याल है कि जी ये सस्ता काफी ज्यादा पड़ सकता है, जिससे हम सोचते हैं कि ओ स्कूल में हर बच्चे को टैबलेट देना, हर बच्चे को लैपटॉप देना, ब्लेंडेड लर्निंग का ये मतलब नहीं होता। ये काफी बड़ी मिसकंसेप्शन है। हम लोग जिनके हैं वो खुद देते हैं क्लिकर्स जो के होते हैं, जिससे कौन बने करोड़पति में नहीं होता, वो होता है प्रोजेक्टर होता है लैपटॉप होता है, हमारी अपनी कॉन्टेंट होती है जो स्पेशलिटी होती है, तो वो एक दफा की आपको ज्यादा कॉस्ट पड़ती है लेकिन वो बच्चों में डिवाइड होके काफी कम हो जाती है।
और ये कि आप ये बता रही थी
करना चाहेंगे
जी, और ये कि अगर आपने प्रोग्राम से पहले बताया था कि अगर हर स्कूल में एक ही क्लासरूम ऐसा वक्फ कर दिया जाए जो ई लर्निंग के लिए हो तो कैसा रहे ये पाकिस्तान में खासतौर पर ये प्रोजेक्ट?
जी, तो यही है हम लोग हर स्कूल में, ये जो तलहा भी बात कर रहे थे कि 200 जो इनके स्कूलों में हम जा रहे हैं, हम उनमें एक बस कमरा है जिसे डिजिटल लर्निंग सेंटर वो देखेंगे, उसमें एक क्लासरूम होगा बस हमारे, जिसमें बच्चे ऑनलाइन भी ब्लेंडेड लर्निंग करेंगे। हमारे पास एक काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मुझे पता है टाइम कम है,
बिल्कुल बहुत कम है।
इसमें एक एक स्कूल है नीलोर में जिसकी शुरू में तरह कितनी इनरोलमेंट थी, 200 बच्चे थे शायद,
425 बच्चे थे, और फिर वो ये सिस्टम इस्तेमाल करने के बाद एक साल के अंदर 950 से ज्यादा हो गए।
अच्छा, तो तला अगर मैं आखिर में आपसे ब्रीफली आप ये हाईलाइट कीजिए कि अगले 5 वर्षों में पाकिस्तान में जो तालीमी मयार है उसको बेहतर बनाने के लिए क्या आप देख रहे हैं, क्या क्या इकदाम हो सकते हैं और क्लास रूम का नक्शा अगले 5 वर्षों में स्कूलों में क्या होगा?
जी, मैं ये देख रहा हूँ कि अब जैसे हुकूमतें जो हैं ये रियलाइज कर रही हैं कि अगर स्कूल रिवायती तरीकों से जो इमारतें हैं और स्कूल्स बनाई जाएं तो बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होगा, तो अब जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी बेस्ड लर्निंग है उसको इस्तेमाल करके ज़्यादा मौसर तरीके से पढ़ाने की कोशिश सारी हुकूमतें जान चुकी हैं कि शायद इसमें इस इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। तो मैं देख रहा हूँ कि अगले 5 साल के अंदर हुकूमतें तालीमी इदारों में टेक्नोलॉजी के थ्रू पढ़ाने के तरीके को इंट्रोड्यूस कराएंगी।
बेहद शुक्रिया तलहा मुनीर, आज के प्रोग्राम को समेटने का वक्त हुआ। हमारे आज मौजूद थे हमारे साथ ई लर्निंग के 2 माहिरीन और पाकिस्तान अमरीका दुनिया के कई मुल्कों में कायम ऑनलाइन लर्निंग की ट्रेनिंग के एक इदारे नॉलेज प्लेटफॉर्म के पाकिस्तान में कंट्री डायरेक्टर तलहा मुनीर खान और सीनियर मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव मैनेजर महरीन सुहेल, और हम शुक्रगुजार हैं फेसबुक पर अपने उन सुनने वालों के जो इस सवाल के जवाब को पोस्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तानी तालीमी इदारों में मयार तालीम की बेहतरी के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किस तरह किया जा सकता है। बेहतरीन 3 जवाब पर हमारे मेहमानों का इदारा नॉलेज प्लेटफॉर्म टोकन इनामत पेश करेगा जिनसे وائس آف امریکہ کا کوئی تعلق نہیں ہوگا. ان ناموں کا اعلان ہم 7 ستمبر یا اس سے پہلے ہر دم رواں زندگی کے اپنے کسی پروگرام میں کریں گے, جس کے بارے میں ہم ہر دم رواں زندگی کے فیس بک پیجز پر پہلے سے اطلاع دے دیں گے. ہمارے پروڈیوسر تھے اسفر امام اور فیس بک پر تعاون کر رہی تھی آمنہ عاصم. یاسمین جمیل کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.